देखिए भाई सबक, وعند الشعبي رحمه الله تعالى له نصف النصيبين أي يجمع بين نصيبه إن كان ذكرا وبين نصيبه إن كان أنثى فله نصف ذلك المجموع ففسره أبو يوسف رحمه الله تعالى بأنه ثلاثة من سبعة. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا خنثی مشکل کی میراث کے بارے میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خنثی مشکل کے لیے اقل میراث ہوگی, یعنی اس کو مرد فرض کر کے اس کا حصہ نکالیں اور پھر اس کو عورت فرض کر کے اس کا حصہ نکالیں, اور جو کم تر ہو ان دونوں میں سے وہ حصہ اس کو دیا جائے گا. اور اس کی ایک مثال بھی ہم نے کر لی تھی کہ ایک عورت کا انتقال ہوا, اس کا خاوند ہے اور اس کی دادی ہے اور خنثی ہے بھائی خنثی, اور اس کو ہم نے مرد فرض کیا تو وہ عورت کا بھائی ہوا اور یہ عصبہ بنتا ہے, اور اس صورت میں اس کو ما بقیہ ملا اور وہ ثلث تھا. اور پھر ہم نے اسی خنثی کو مؤنث فرض کیا, یعنی اس مرنے والی کی بہن فرض کیا, تو اس صورت میں بہن کا جو حصہ ہوتا ہے بہن کا وہ نصف حصہ ہوتا ہے. اس صورت میں چھ سے مسئلہ بنا اور اس کا عول ہوا سات تک, اور اس سات میں سے تین جو ہے وہ خنثی کو مل گیا. تو ایک صورت میں ثلث مل رہا تھا اور ایک صورت میں سات میں سے تین مل رہا تھا. اب یہ سات میں سے جو تین ہے یہ سات کے ثلث سے زیادہ ہے, تو ایک صورت میں ثلث مل رہا ہے اور ایک صورت میں ثلاثۃ اصبع مل رہے ہیں, یعنی سات میں سے تین, اور سات کا ثلث ہوتا ہے دو صحیح ایک بٹا تین. سات کا ثلث کیا؟ دو صحیح ایک بٹا تین. سات میں سے ثلث نکالیں تو دو صحیح ایک بٹا تین, اور سات میں سے ثلاثۃ اصبع نکالیں تو وہ تین. تو ظاہر سی بات ہے کہ تین زیادہ ہے اور دو صحیح ایک بٹا تین کم ہے, تو معلوم ہوا اس صورت میں اس کو ثلث سے زیادہ مل رہا ہے, تو وہی مرد فرض کرنے کی صورت میں جو ثلث مل رہا تھا اس پر عمل کر لیں گے. اب آگے امام شعبی رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر کریں گے. امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خنثی مشکل کے لیے دونوں حصوں کا نصف ہوگا, یعنی مرد فرض کرنے کی صورت میں جو حصہ ملے اور عورت فرض کرنے کی صورت میں جو حصہ ملے ان دونوں حصوں کا نصف جو ہے وہ خنثی مشکل کو دیا جائے گا, نصف دیا جائے گا. اب اس قول کی تفسیر کیا ہے, کس طرح یہ نصف نکالیں گے؟ تو امام ابو یوسف رحم اللہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں اور امام محمد رحم اللہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں. امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سات میں سے تین حصے ہو جائیں گے, خنثی مشکل کے لیے سات میں سے تین حصے. یہ کس کی تفسیر کر رہے ہیں؟ امام شعبی کا جو قول تھا کہ نصف النصیبین, خنثی کو کتنا ملے گا؟ نصف النصیبین, دونوں کے حصوں کا نصف, یعنی مرد اور عورت کے حصے کا نصف. اب اس کی کیا تفسیر؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے قول کا معنی یہ ہے کہ خنثی مشکل کو سات میں سے تین حصے ملیں گے, جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شعبی کے قول کا معنی یہ ہے کہ خنثی مشکل کو بارہ میں سے پانچ حصے ملیں گے اور باقی حصے بیٹے کے ہو جائیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اسی کو بیان کرنے لگے ہیں. دیکھیے بھائی, کہتے ہیں وَعِنْدَ شَعْبِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ, اور امام شعبی رحم اللہ کے نزدیک خنثی مشکل کے لیے دونوں کے حصوں کا نصف ہوگا. اَيُجْمَعُ بَيْنَ نَصِيبِهِ اِنْ كَانَ ذَكَرًا وَبَيْنَ نَصِيبِهِ اِنْ كَانَ اُنثَى فَلَهُ نِصْفُ ذَلِكَ الْمَجْمُوعُ, یعنی جمع کیا جائے گا اس خنثی کے حصے کو اگر وہ مذکر ہو اور اس کے حصے کو اگر وہ مؤنث ہو, تو یہ دونوں کو جمع کریں گے. فَلَهُ نِصْفُ ذَلِكَ الْمَجْمُوعُ, تو اس خنثی کے لیے اس مجموعے کا نصف ہوگا. یہ ان کا قول ہے. تو فَفَسَّرَهُ ابو یوسف رحمہ اللہ, تو اس قول کی تفسیر کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے, بِأَنَّهُ ثَلَاثَةٌ مِّن سَبْعَةٍ, کہ یہ سات میں سے تین ہوں گے, ये निसफ नसीबैन कितना बनेगा,
सात
में से तीन। अब तवज्जो से बैठना है, सारा हिसाब चलेगा, खूब तवज्जो से बैठेंगे तो बात समझ में आएगी। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं उनके कौल की तफसीर करते हुए कि निसफ नसीबैन जो है वो सात में से तीन है। लिअन्ना लहुल कुल आला तकदीर जुकूरती, इसलिए क्योंकि खुनसा मुश्किल के लिए कुल होगा मुजक्कर फर्ज करने की सूरत में, व निसफ आला तकदीर उनूसती, और निसफ होगा मुअन्नस फर्ज करने की सूरत में। देखिए भाई, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तफसीर कर रहे हैं इमाम शाबी की कौल की। इमाम शाबी क्या फरमाते थे, निस्फुन नसीबैन मिलेगा। अभी निस्फुन नसीबैन का क्या माना, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैयत का अगर एक बेटा हो तो उसको सारा माल मिल जाता है, तवज्जो है, और कोई रिश्तेदार नहीं तो बेटा सारा माल ले जाता है, और अगर मैयत की एक बेटी है तो फिर वो निसफ की हकदार होती है, निसफ की। तो बेटे का हिस्सा हुआ एक, बेटी का हिस्सा हुआ निसफ, इन दोनों को जमा करो कितना बन गया, डेढ़ बन गया, यानी एक और निसफ, इस डेढ़ का आधा करो कितना बन गया, तीन पाव, तीन पाव बन गया भाई, कितना बन गया, तीन पाव। देखो ना, डेढ़ का आधा निकालना है, एक का आधा कितना, एक का निसफ कितना होगा, निसफ, और निसफ का निसफ कितना होगा, रोबो, तो निसफ और रुबो को मिलाओ कितना हो गया, तीन पाओ, यानी तीन अरबा भाई, तीन रोबो भाई, तीन रोबो हो जाएगा खुनसा मुश्किल का हिस्सा। फिर सुनो, अगर किसी शख्स का सिर्फ एक बेटा हो तो उसको कितना मिलता है, कुल माल, और बेटी हो तो निसफ, निसफ, तो इन दोनों का हिस्सा जमा कर लो कितना हो गया, डेढ़, और डेढ़ तो एक के अंदर कितने रुबो होते हैं, चार, तो डेढ़ के अंदर कितने रुबो होंगे, छह, और इस छह में से निसफ देना है, इसका निसफ कर दें, वो कितना हुआ, तीन, तो तीन रुबो हो गए, तो खुनसा मुश्किल को कितना मिलेगा, तीन रुबो मिलेगा। बेटा अकेला हो तो कुल माल, बेटी अकेली हो तो निसफ माल, और खुनसा मुश्किल को तीन रुबो मिलेगा। बात समझ में आ गई। देखिए भाई, फफस्सरहु अबू यूसुफ रहिमहुल्लाहु बिअन्नहु सलासतुम मिन सबअतिन, तो इमाम शाबी के इस कौल की तफसीर की है इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह ने, ये निसफुन नसीबैन जो है वो सलासतुम मिन सबअतिन, वो सात में से तीन है। लिअन्न लहुल कुल अला तकदीर जुकूरती, इसलिए क्योंकि खुनसा मुश्किल के लिए कुल होगा अगर इसको मुजक्कर फर्ज करने की सूरत पर, वन निसफ आला तकदीर उनूसती, और इसके लिए निसफ होगा इसको मुअन्नस फर्ज करने की सूरत पर, फसारा वाहिदा व निसफन, तो ये मजमुआ क्या हो गया, एक और निसफ, मजमुआ क्या बन गया, एक और निसफ, यानी डेढ़ बन गया, यानी डेढ़। फनिसफुहु सलासतुल अरबाई, तो इस डेढ़ का जो निसफ है वो सलासतुल अरबा है, यानी तीन रुबो है। फयकून लिल इब्निल कुल्लु, तो बेटे के लिए सारा होगा, इनकान मुनफरिदन अगर वो अकेला हो, वलिल खुनसा सलासतुल अरबाई, और खुनसा के लिए तीन रुबो होंगे, खुनसा के लिए तीन रुबो होंगे। फल मखरजु अरबातुन, अच्छा यहां तक बात समझ में आ गई, अब जरा कागज कलम निकालें भाई, ये लिखें भाई सूरत मसला, जी जल्दी कीजिए भाई, अब लिखें भाई ऊपर عند ابي يوسف رحمه الله, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, عند ابي يوسف رحمه الله, लिख लिया। अब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ये मसला कैसे होगा वो जिक्र होने लगा है जी। अब इसे नीचे एक लकीर खींचें दाएं से बाएं भाई, जैसे पहले खींची थी इसी तरह दाएं से बाएं एक लकीर खींच लें, इस लकीर के नीचे एक किनारे पर लिख दें इबनुन, 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 और इस लकीर के दूसरे किनारे पर उसके नीचे लिख दें खुनसा भाई, खुनसा, लिख लिया। अच्छा, बेटा एक हो तो उसको कितना मिलता है कुल,
बारह
और खुनसा को कितना मिलता है? अभी इन्होंने बताया तीन पाव, कितना
तीन
मिलता है? तीन पाव,
पाव
यानी तीन रुबो।
जी
तो बेटे को मिलेगा कुल,
कुल
और कुल में कितने रुबो होते हैं? और कुल में कितने रुबो होते हैं? चार,
चार
चार रुबो होते
है
हैं। तो नीचे बेटे के नीचे लिखे चार, यानी कुल इसको दे रहे हैं। और खुनसा को कितना दे रहे हैं? तीन रुबो, तो खुनसा के नीचे लिखे तीन। बात समझ में आ रही
जी
है।
सर जी
और मसाला बना चार से, कि क्यों? क्योंकि कुल कितना माल है? कुल के कितने रुबो हैं?
चार
चार है ना,
जी
तो
सर
चार से ही मसाला बनेगा। लिहाजा ऊपर लिख दें, इबन के ऊपर, लकीर के ऊपर चार लिखें भाई। चार से मसाला बना, चार कुल था। ये कुल का कुल किसको दे दिया? बेटे
बेटे
को,
को
यानी चार रुबो बेटे को दे दिए और तीन रुबो खुनसा को दे दिए। तो मसाला बनाया चार से, और नीचे जब हमने शुमार किया तो चार और तीन सात, हिस्से हो गए सात। जब हिस्से ज्यादा हो फिर औल करते हैं, और जितने हिस्से हो वहां तक औल ले जाते हैं। तो चार के आगे लिखें औलुन। ऊपर जहां चार लिखा था ना, जहां मसाला बनाया था,
जी सर
उसके
औल
साथ लिखें औल, ऐन वाउ लाम, औलुन। और
जी
उस कहां तक औल करना है? अब कितने हिस्से हैं? सात। तो
सात
औल के आगे लिख दें सात, यानी कुल माल के सात हिस्से कर देंगे, और चार हिस्से बेटे को दे देंगे और तीन हिस्से खुनसा को दे देंगे।
जी सर
ये किसके नजदीक है? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक। देखो, खुनसा को बेटे और बेटी का निसफ मिला, यानी तीन पाव मिला, यानी तीन रुबो। तरीका समझ में आ गया।
जी सर
फिर आइए किताब पर। कहते हैं फयकून लिल इब्निल कुल्लू, तो बेटे के लिए सारा होगा। इनका नमुन फरीदन, अगर वो अकेला हो। वलिल खुनसा सलासतुल अरबाई, और खुनसा के लिए तीन रुबो होंगे। फल मखरज अरबातुन, तो मखरज क्या है?
चार
चार, यानी
चार
मसाला किससे बनेगा? चार
चार
से, ये
से
मखरज जिसे मसाला निकलता है। फल मखरज अरबातुन, तो मखरज जो है वो चार होगा। हमने भी मसाला किससे बनाया? चार से।
चार
फल कुल्लु अरबातुन, तो कुल कितना है? चार है। तो वो बेटे का हिस्सा हुआ। तो अच्छा, तो मखरज चार बनाया।
जी
तो
सर
अब इस चार का कुल, चार का कुल किसी को देना हो तो कितना देंगे? चार ही देंगे
चार जी
ना।
सर
तो फल कुल्लु अरबातुन, तो इसका कुल जो है वो अरबा है। व सलासतुल अरबाई सलासतुन, और इसके तीन रुबो जो है वो तीन है। तो चार बेटे को दे देंगे और तीन किसको? खुनसा को।
को
फसारा सब आतन, तो ये कितने हिस्से हो गए? सात।
सात
फसारा सब आतन बितरीकिल औली, तो ये सात हो गए। किस तरीके पर? औल के तरीके पर।
तरीके
हमने भी क्या किया? औल कर दिया सात तक। लिल इब्ने अरबातुन वलिल खुनसा सलासतुन, बेटे के लिए चार होंगे। वलिल खुनसा सलासतुन, और खुनसा के लिए तीन होंगे।
तीन
तरीका समझ में
जी
आ
सर
गया।
जी
अब इसी को दूसरे लफ्जों में वो बयान करते हैं। कहते हैं वह इन शिता, और अगर आप चाहें तो तकूलू यूं कहें, लहु निसफ इन काना उनसा, कि खुनसा के लिए निसफ होगा अगर उसको क्या फर्ज करें? मुअन्नस। उसके लिए निसफ होगा अगर वो मुअन्नस हो। वल कुल्लु इन काना जकरन, और खुनसा के लिए कुल का कुल होगा अगर वो मुजक्कर हो।
जकर
फनिसफ मुतयक्कनुन, तो निसफ तो क्या है?
यकीन
अकल तो यकीनी होता है ना।
जी
मसलन मैं आपसे कहता हूं कि जैद को या 15 रुपए दे देना या 20 दे देना। मालूम हुआ 15 से कम तो बिल्कुल नहीं देने, और 20 देना चाहे तो आपकी मर्जी है। तो अकल जो होता है वो यकीनी है, और जायद में क्या होता है? इहतमाल। ये तो मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा था। यहां पर जो है कि हमने खुनसा को देना है, तो एक सूरत है इसको मुजक्कर फर्ज करें तो इसको मिलता है कितना? चार। मुअन्नस फर्ज करें तो निसफ। मालूम है निसफ से तो कम किसी कोई सूरत नहीं है। मालूम है निसफ तो यकीनी है। निसफ क्या
जी
है? यकीनी।
यकीन
और दूसरे निसफ में शक है अगर पूरा देंगे। फिर सुनो, खुनसा को अगर मुजक्कर हो तो कितना देना चाहिए? कुल। अगर
कुल
मुअन्नस हो तो देना चाहिए निसफ। तो
निसफ
मालूम हो ये निसफ तो यकीनी है। कुल में से निसफ तो यकीनी, और बकिया निसफ के अंदर, बकिया निसफ के अंदर शक है, शक है, तो उस बकिया निसफ का आधा इसको दे देंगे। और निसफ का निसफ कितना होता है? रुबो। तो निसफ यकीनी था और एक रुबो साथ और भी मिल गया, कितना बन गया? तीन रुबो बन गया। तरीका समझ में आया? फिर देखिए कहते हैं वह इनशित तकूलू, और अगर आप चाहें तो यूं कहें कि लहु निसफ इनकान उनसा वल कुल इनकान दकरन, के खुनसा के लिए निसफ होगा अगर वो मुअन्नस हो, और कुल होगा और सारा होगा इनकान जकरन अगर वो मुजक्कर हो। फन निसफ मुतयक्कनुन, तो निसफ तो यकीनी है, कुल में से निसफ तो यकीनी है। वका शक कुफिन निसफिल आखर, दूसरे निसफ में शक आ गया। कुल में कितने निसफ होते हैं? दो निसफ, तो निसफ तो एक यकीनी, बाकी जो एक निसफ है उसमें शक है कि वो देना या नहीं देना। तो जब शक आ गया तो उसको निसफ कर दो, निसफ कर दो। तो निसफ का निसफ कितना हुआ? रुबो। तो वो निसफ यकीनी और साथ एक रुबो भी मिल गया, तो कितने हो गए? तीन रुबो हो गए। तो कहते हैं वका शक कुफी निसफिल आखरी, और शक वाके हो गया दूसरे निसफ में। फन निसफ सारा रुबान, तो वो निसफ क्या बन गया? रुबो, यानी उसका आधा हो गया। तो फन निसफ व रुबो सलासतु अरबाइन, तो निसफ और रुबो जो है वो तीन रुबो हो गए, सलासतु अरबा हो गए, तीन रुबो हो गए। बात समझ में आ गई? वफसरा मुहम्मद रहमहुल्लाह, अब इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह तफसीर करते हैं निसफ नसीबैन की, जो इमाम शाबी रहमहुल्लाह का कौल है। वफसरा मुहम्मद रहमहुल्लाह, और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ने इसकी तफसीर की है, बि अन्नहु खमसतुम मिन इस्ने आशारा, कि वो पांच होंगे बारह में से, कुल माल के बारह हिस्से कर देना, और उसमें से कितने दे देना? पांच दे देना। لأنه يستحق النصف مع الابن إن كان ذكرا, इसलिए क्योंकि खुनसा जो है वो निसफ का मुस्तहिक है مع الابن बेटे के साथ, इन كان ذكرا अगर वो मुजक्कर हो। इधर देखिए, मैयत के अगर दो बेटे हों, खुनसा को भी हमने क्या फर्ज कर लिया? बेटा। तो दो बेटे हों, उनमें माल किस तरह तकसीम करते हैं? आधा आधा दे देते हैं। कितना देते हैं? आधा आधा। और अगर खुनसा को मुअन्नस फर्ज करें, तो मैयत का एक बेटा हुआ एक बेटी हुई, तो फिर इस सूरत में लिज्जा करें मिसलु हाजिल उनसैन, बेटे को दो बेटियों के बराबर हिस्सा मिलता है। तो गोया तीन बेटियां हैं इस टाइम, तो बेटे को दो बेटियों के बराबर और बेटी खुनसा को एक मिलेगा, तो कुल माल के गोया तीन हिस्से हो जाएंगे, और खुनसा को सुलुस दे देंगे, और दो सुलुस किसको दे देंगे? बेटे को। वो तफसीर कर रहे हैं इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह कि लिअन्नहु यस्तहिक्कु निस्फ मा लिबनि इन काना ज़करन, कि खुनसा जो है वो आधे का मुस्तहिक होगा बेटे के साथ, इन काना ज़करन अगर खुनसा क्या हो? मुजक्कर हो, मर्द हो। वह सुलुसा, और खुनसा सुलुस का मुस्तहिक होगा इन काना उनसा अगर वो मुअन्नस हो, उसके साथ भाई भी है ना, तो दो सुलुस उसके और एक सुलुस इसका। अब इधर देखिए, भाई होने की सूरत में खुनसा कितने का मुस्तहिक? निसफ का। और बहन होने की सूरत में खुनसा कितने का मुस्तहिक? सुलुस का, सुलुस का। तो निसफ और सुलुस, निसफ और भाई हो, इसको मर्द फर्ज करें तो कितना हिस्सा? निसफ। और बहन फर्ज करें तो कितना हिस्सा? सुलुस। अब छह का अदद ले लें, छह का निसफ कितना? तीन। और छह का सुलुस कितना? दो। तीन और दो कितने हो गए? पांच। निसफ और सुलुस को जमा किया, ये कितने हो गए? पांच, यानी छह में से पांच हो गए। और इन दोनों का निसफ देना है खुनसा को। तवज्जो है? फिर सुने, खुनसा को लड़का फर्ज करें तो कितना हिस्सा? निसफ। और खुनसा को लड़की फर्ज करें तो कितना हिस्सा? सुलुस। निसफ और सुलुस, ये अगर कुल माल के छह हिस्से कर दें हम, तो छह का निसफ कितना? तीन। और छह का सुलुस कितना? दो। ये निसफ और सुलुस को जमा करो, कितना हुआ? पांच। तो ये दोनों के हिस्से हो गए, लड़के का भी और लड़की का भी। और ये सारा देना है या इसका आधा देना है? आधा देना है, दोनों के हिस्सों का आधा। निसफुन नसीबैन, दोनों के हिस्सों का आधा। तो ये कुल पांच है, इस पांच का आधा वो कितना बन गया? ढाई बन गया, अढ़ाई भाई, दो और आधा, दो और आधा। देखिए भाई बयान कर रहे हैं, कहते हैं लिअन्नहु यस्तहिक्कु निस्फ मअल इब्नी, इसलिए क्योंकि खुनसा जो है वो निसफ का मुस्तहिक है भाई के साथ, इनकाना ज़करन अगर वो मुज़क्कर हो, वस्सुलुस इनकाना उनसा, और खुनसा जो है सुलुस का मुस्तहिक है अगर वो मुअन्नस हो, वन्निस्फ वस्सुलुस खमसतु मिन सित्ततिन, और निसफ और सुलुस जो है ये पांच हो जाते हैं, ये पांच हैं मिन सित्ततिन छह में से, फलहु निसफु जालिका, तो खुनसा के लिए इस पांच का निसफ होगा, पांच का निसफ, और पांच का निसफ कितना है, दो और आधा यानी अढ़ाई भाई, वह हुआ स्नानी व निसफ मिन सित्ततिन, और वो दो और निसफ है छह में से यानी अढ़ाई है, वह वकाल कसरु बिन निसफी। अच्छा अब कसर आ गई, अब क्या आ गई, कसर आ गई। याद रखो इल्मे मीरास में कसर की गुंजाइश नहीं, जिसको भी हिस्सा देना है पूरा पूरा अदद के साथ होना चाहिए, आधा नहीं, डेढ़ दे दो नहीं, ढाई दे दो नहीं, साढ़े तीन दे दो, पौने चार दे दो नहीं, नहीं नहीं, पूरा पूरा हिस्सा दो दे दो या तीन दे दो या चार दे दो या छह दे दो, लेकिन साढ़े छह दे दो या पौने सात दे दो नहीं, ये तो कसर आ रही है, आदत को तोड़ना पड़ रहा है, पूरा पूरा आदत होना चाहिए। बात समझ में आ गई, जब यहां कसर आ रही है तो मजबूरन अब हम जरब देंगे, क्या करेंगे, जरब देंगे ताकि कसर खत्म हो जाए। अब ढाई को दो से जरब दे दो यानी अढ़ाई को दुगना कर दो, कितना बन गया, पांच, और छह से मसला बना था, छह को भी दुगना कर दो, कितना हुआ, बारह, तो देखो बारह में से पांच हो गए। तरीका समझ में आया। और एक और बात याद रखना, जरब देने से कोई चीज बढ़ती नहीं है, उसके अज्जा बढ़ जाते हैं। जरब देने से चीज नहीं बढ़ती, उसके अज्जा बढ़ते हैं। देखो पिछले सबक में आपने मसला किया था, मसला किससे बनाया था, छह से, और फिर हमने इसको सात से जरब दी थी, तो मसला किससे बन गया था, बयालीस से। तवज्जो है, जरा कागज पर नजर रखें, पिछले मसले में जो सवाल किया था आपने, पहला सवाल मसला किससे बनाया था, छह से, और फिर हमने इसको सात से जरब दे दी थी, तो मसला किससे बन गया, बयालीस से। तो बयालीस से कोई ये माना नहीं है कि अब उस आदमी का माल ज्यादा हो गया, नहीं नहीं, पहले था मसला छह से कि कुल माल के छह हिस्से कर दो, वो सवाल पे नजर है, छह में से तीन किसको दे दो, जौज को, एक किसको दे दो, जद्दा को, और दो किसको दे दो, खुनसा को। अब उसके बाद जब आपने जरबें दे दी तो कुल माल के अब हमने कहा छह हिस्से न करो, बयालीस हिस्से कर दो, और बयालीस में से इक्कीस किसको दे दो, खावंद को, सात हिस्से किसको दे दो, जद्दा को, और चौदह हिस्से किसको दे दो, खुनसा को दे दो। ये कोई माल उसका ज्यादा हो गया या माल के टुकड़े ज्यादा हो गए, टुकड़े ज्यादा हो गए, पहले था छह हिस्से सिर्फ करो और छह में से तीन, एक और दो करके तकसीम कर दो, अब है उसी माल के बयालीस टुकड़े कर दो, बयालीस हिस्से कर दो, तो देखो छह को सात से जरब दी तो बयालीस आया। इसका यह माना नहीं कि वो छह बढ़ के बयालीस हो गया, नहीं, उस छह के टुकड़े ज्यादा हो गए, छह के बजाय बयालीस टुकड़े हो गए माल के। बात समझ में आ गई। ये इसी तरह है जैसे एक रोटी मैं आपको दूं और आपको कहूं ये छह आदमियों में तकसीम कर दो, कितने आदमियों में, छह, तो आप उसके छह टुकड़े करके तकसीम कर देंगे। और अगर मैं आपको कहूं कि नहीं, यूं करो, छह को सात से जरब दे दो और इतने टुकड़े इसके कर दो, तो आप क्या करते हैं, उसके, आप उसके बयालीस टुकड़े करते हैं, क्या रोटी बढ़ गई या उसके टुकड़े बढ़ गए, टुकड़े बढ़ गए, अज्जा बढ़ गए। तो जरब से अज्जा बढ़ते हैं, वो चीज नहीं बढ़ती। तो हम चाहे छह हिस्से करें माल के और फिर तकसीम करें, जैसे उस सवाल में था, पहले सवाल में, चाहे हम उसके बयालीस टुकड़े करके तकसीम करें, माल उतना ही है, बस टुकड़े ज्यादा कर दिया आपने, और हिस्सा भी हर एक को उतना ही उतना मिल रहा है। छह की सूरत में खावंद को कितना मिल रहा था, तीन, तो और तीन छह में से कितना है, निसफ, गोया निसफ माल मिल रहा है, और बयालीस में से खावंद को हमने कितने हिस्से दिए थे, इक्कीस, उस सूरत में भी देखो उसको निसफ मिल रहा है। तो हिस्से नहीं बढ़ते जरब देने से, बल्कि अज्जा बढ़ते हैं। तो मैं इसलिए यह तफसील बयान की क्योंकि अभी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया था कि खुनसा को पांच का निसफ देना है, और पांच का निसफ कितना? अढ़ाई। और अढ़ाई को हमने कसर खत्म करनी है, फिर हम इसको दो से जरब देंगे, तो अढ़ाई जरब दो कितना हो गया? पांच हो गया। तो आप ये ना कहें कि ये दो से जरब दी तो ये माल बढ़ गया, माल नहीं बढ़ा, उसके हिस्से बढ़ गए। बात समझ में आ गई? तो देखिए कहते हैं वबकाल कसरु बिन निसफी, और कसर वाके हो गई निसफ के साथ, यानी आधा आ गया, और आधा तो कसर है, माना समझ में आ रहा है? तो कहते हैं वबकाल कसरु बिन निसफी, और कसर वाके हो गई निसफ के साथ, फजूरिबा फिस नहीं नी, तो इसको जरब दे दी गई दो के अंदर, तो सारा खम सतम मिनिस ने आशारा, तो ये पांच हो गया बारह में से, वह हुआ नसीबुल खुनसा, और ये खुनसा का हिस्सा है, वल बाकी, और जो बाकी है बारह में से पांच खुनसा को दे दिए, कितने रह गए? बारह में से पांच खुनसा को दे दिए, कितने रह गए? सात। सात जो है वो बेटे का हिस्सा है। तो कहते हैं वल बाकी, और जो बाकी है वो हुआ सबअतु, और जो और वो सात है नसीबुल इब्नी, वो बेटे का हिस्सा है। जरा ये सवाल कीजिए भाई, लिख ली कॉपी पर कीजिए, लिख लिया था इंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्ला, इंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्ला, उसी तरह लकीर खींचें, एक तरफ लकीर के नीचे लिखें इब्नुन, दूसरी तरफ लिखें खुनसा, खुनसा। अच्छा, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक खुनसा को कितना देना है, मसला किससे बनाना है? छह से। अव्वल जब हिसाब किया था कि खुनसा को कितना देना है, छह में छह का निसाफ तीन, और छह का सुलूस दो, तीन और दो पांच, और पांच का निसफ देना है, वो कितना है? अढ़ाई। तो मसला गोया बनाएंगे छह से, तो इब्नुन के ऊपर लकीर के ऊपर लिखें छह, ये मसला बना छह से, छह का छह में से अढ़ाई, अढ़ाई कैसे लिखते हैं? दो सही एक बटा दो, दो सही एक बटा दो, दो लिखें, दो के साथ लकीर लगाएं दाएं तरफ, और लकीर के ऊपर एक लिखें और लकीर के नीचे दो लिखें, दो सही एक बटा दो, दो सही एक बटा दो का क्या माना? दो पूरे, दो पूरे और आधा। अच्छा, तो छह में से अढ़ाई निकल गए, बाकी कितने बचे? छह में से ढाई निकाल दें, कितने रह जाते हैं? साढ़े तीन, साढ़े तीन रह गए ना, तो साढ़े तीन बेटे का हिस्सा हो गया, उसके नीचे लिखें तीन सही एक बटा दो, तीन, तीन के साथ लकीर, और उस लकीर के ऊपर एक और नीचे दो, तीन सही एक बटा दो। मैंने आपको बताया था निसफ को कैसे लिखते हैं? एक बटा दो। सुलुस को कैसे लिखते हैं? एक बटा तीन। रुबो को कैसे लिखते हैं? एक बटा चार। अभी एक दो सबक कबल मैंने लिखवाया था। तो यहां पर तो बेटे का हिस्सा कितना हुआ छह में से? साढ़े तीन। और खुनसा का हिस्सा कितना हुआ? अढ़ाई हुआ। तो अब कसर आ रही है, और इल्मे मीरास में कसर की गुंजाइश नहीं, लिहाजा कसर को खत्म करेंगे, और नीचे जो अदद होता है उसी से जरब देते हैं। तो तीन सही एक बटा दो, तो नीचे क्या है? दो, और दो सही एक बटा दो, यहां भी नीचे क्या है? दो, तो लिहाजा दो के साथ जरब देंगे, दो के साथ। ऊपर छह लिखा था, छह, छह के आगे लिखें तसहीह, साथ बिल्कुल जोड़कर लिखें तसहीहुन, ता स्वाद या हा, फिर या और फिर हा, तसहीह भाई किसी चीज को सही करना, हम तसही कर रहे हैं मसले की। तो छह को, छह को दो से जरब दी तो कितना बना? बारह। तो तसही के आगे लिख दें बारह, और दो के साथ जरब दी है तो सारे मसले को दो से जरब देना पड़ेगी। साढ़े तीन को दो से जरब दें, साढ़े तीन को दुगना करें सात, तो साढ़े तीन के नीचे लिख दें सात भाई, सात। और ढाई को भी दो से जरब दें, ढाई को दुगना करें कितना हुआ? पांच, तो ढाई के नीचे पांच लिख लें। तरीका समझ में आ गया? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मसला किससे बना? बारह से, और बेटे को कितने? सात, और खुनसा को
पांच
पांच मिल
मिल
गए। ये है जो वो फरमाते थे कि खुनसा को पांच मिलेंगे 12 में से।
गए।
तरीका समझ में आ गया? देखिए किताब पर कहते हैं वल बाकी वह हुआ सबअतु नसीबुल इब्नी, और बाकी जो है और वो सात है वो बेटे का हिस्सा है। वह इन शिअ तकूलु, और अगर आप चाहें तो यूं कह लें। दूसरे तरीके से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की तफसीर कर रहे हैं, कहते हैं वह इन शिअ तकूलु, और अगर आप चाहें तो यूं कहें असुलुसु इनकान उनसा व निसफ इनकान जकरन, कि खुनसा के लिए सुलुस होगा अगर वो मुअन्नस हो और निसफ होगा अगर वो मुजक्कर हो। वह मखरज हो मा सित्ततुन, और इसका मखरज छे है। इसका मखरज क्या है? क्यों? याद रखो, जब मसले के अंदर निसफ और सुलुस इकट्ठे हो जाएं, मैंने आपको बतलाया था भाई एक दो सबक कबल कि मसले में अगर निसफ आए तो मसला दो से बनाते हैं, मसले में अगर सुलुस आए तो मसला तीन से बनाते हैं, मसले में अगर रुबो आए तो मसला चार से बनाते हैं, मसले के अंदर अगर सुदुस आए तो मसला छह से, मसले में अगर सुमुन आए तो मसला आठ से बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरह याद रखना, जब मसले के अंदर मीरास में निसफ और सुलुस जमा हो जाएं, निसफ और सुलुस, तो फिर मसला छह से बनता है। इसीलिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, मसला किससे बनाओ? छह से। जाबता समझ में आया? तो कहते हैं वह इन शीत तकूलू, और अगर आप चाहें तो यूं कहें असुलुसु इनकान उनसा व निसफ इनकान जकरन, कि सुलुस होगा खुनसा के लिए अगर वो मुअन्नस हो और निसफ होगा अगर वो मुजक्कर हो। वह मखरज हुमा सित्ततुन, और सुलुस और निसफ इन दोनों का मखरज तो छे है। ये किससे पूरा निकलते हैं? पूरा पूरा किससे निकलते हैं? छे से। फसुलुसु इसनानी, तो छे का सुलुस कितना है? दो, और निसफ कितना है? तीन। वही बयान कर रहे हैं, फसुलुसु इस्नानी, तो सुलुस छे का जो है वो दो है। वह निसफु सलासतुन, और निसफ जो है छे का वो तीन है। फस्नानी मुतयक्कनुन, तो दो तो पक्का है, जो अकल है वो तो पक्का, वो तो यकीनी है। खुनसा को अगर मुअन्नस फर्ज करें तो कितना मिलता है? सुलुस, और मुजक्कर फर्ज करें तो निसफ, और छे का सुलुस कितना? दो, और छे का निसफ कितना? तीन। तो इस तीन और दो में से कम क्या है? दो। तो दो तो यकीनी है, इससे कम तो नहीं देना, दो तो यकीनी। तीन में से दो निकाल दो, कितने रह गए? एक। दो तो यकीनी और इस एक में शक है, ये एक जायद भी दें या ना दें तो इसका निसफ दे देंगे, इसका निसफ। तो दो और आधा कितना हो गया? अढ़ाई हो गया, बात वही हो गई। तो कहते हैं फस नानी मुतयक्कन, तो दो मुतयक्कन है, यकीनी है। वका शक कुफिल वाहिदिल आखरी, शक वाकई हो गया फिल वाहिदिल आखरी, दूसरे एक में। लड़की हो तो कितना? दो, लड़का हो तो तीन, यानी कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा तीन। तो तीन में से दो तो पक्के हैं ना, जो लड़के वाला हिस्सा है तीन, उसमें से दो तो यकीनी, और तीसरा वाला ये जो एक और भी है जिसे ये तीन हो जाता है, इसमें शक आ रहा है, इसको आधा कर देंगे। बात समझ में आ गई? ये माना है फसना नि मुतयक्कनुन वका शक फिल वाहिदिल आखरी, तो दो यकीनी है, शक वाके हो गया दूसरे एक में। फनिस्फु सारस नैनी व निस्फन, पस निसफ जो है उस एक का, सारस नैनी व निस्फन, तो वो जो दो था अब क्या बन गया? दो तो यकीनी थे और निसफ और भी मिला दिया, कितना हो गया? अढ़ाई। ये माना है फनिस्फु, तो वो जो निसफ था सारस नैनी व निस्फन, वो अढ़ाई हो गया, यानी दो पूरा और आधा। और वकाल कसरु बिन निस्फी, और कसर वाके हुई निसफ के साथ, तो इसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? पांच। फसार खमसतम मिनिस्ने आशारा, तो ये पांच हो गया बारह में से, पांच हो गया बारह में से। अच्छा जी, वह इन अरत अन तारीफा अन्ना सला सतम मिन सब आतिन अक्सर अम खम सतम मिन स्ने आशारा। साहिबे शरहे विकाया मालूम हुआ रियाजी के भी बड़े माहिर हैं भाई। वो फरमाते हैं, वो जो दो सवाल किए उन पर जरा नजर रखो भाई। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक खुनसा को सात में से तीन देने हैं, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक बारह में से तीन पांच देने हैं। अब आप हैरान होंगे कि ये 12 में से 5 और 7 में से 3 ये एक जैसे हैं या इनमें कुछ फर्क है। एक सूरत क्या है, कुल माल के 7 हिस्से करो और 3 दे दो, 7 में से यानी आधे के करीब दे दो। 7 का आधा कितना है, 3.5, लेकिन 3.5 नहीं दो बल्कि क्या दो, 3 दो। तो आधे के करीब माल किसको दे दो, खुनसा को। और इमाम मोहम्मद के कौल में देखें 12 में से 5 दे दो, 12 का निसफ कितना, 6, तो गोया निसफ के करीब दे दो, निसफ ना दो
जी।
तो उधर भी है निसफ के करीब दे दो, इधर भी है निसफ के करीब दे दो, तो दोनों में क्या फर्क है। बात तवज्जो है, अब वो फर्क बयान करेंगे। जरा आप यूं करें, कापियों पर देख, कापियां सामने रखें भाई। हम यूं करते हैं, एक में मसला बनाया है 7 से और एक में मसला बनाया है 12 से। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मसला किससे बना, 7 से। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मसला किससे बना, 12 से। हम यूं करते हैं, दोनों मसले एक ही आदत से बना लेते हैं, फिर पता लग जाएगा उसका क्या तरीका है। पहले भी हमने अमल दोहराया था, ऊपर कापी में क्या लिखा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मसला किससे है, 7 से। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मसला किससे है, 12 से। यूं करो, इस 12 से उस ऊपर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह वाले सारे मसले को जरब दे दो। नीचे वाला मसला किससे है, 12 से। इस 12 के साथ ऊपर वाले सारे मसले को जरब दे देंगे, और ऊपर वाला मसला किससे बना है, 7। इस 7 से नीचे वाले सारे मसले को जरब दे देंगे, देखना मसला हल हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगी सूरत हाल जी। सबसे पहले ऊपर वाले मसले को जरब देते हैं, किससे जरब देनी है, 12 से जी। 12 सते 84, 7 के आगे थोड़ा से फासले पर 84 लिख दें, 7 के आगे थोड़े से फासले पर लिख दें 84। किससे जरब दी, 12 से। तो नीचे हिस्सों को भी 12 से जरब देंगे। बेटे का हिस्सा कितना है, 4, तो 12 चौके 48, 4 के नीचे 48 लिख लें। अच्छा, हुंसा के हिस्से को भी 12 से जरब दें, 12 तीय 36, हुंसा का हिस्सा 36 हो गया। मसला बन गया 84 से, 84 में से 48 हिस्से किसके हो गए, बेटे के, और हुंसा के कितने हिस्से हो गए, 36। अब मुझे बताओ, पहले मसला बन रहा था 7 से, अब मसला बन रहा है 84 से, कोई माल ज्यादा हो गया,
नहीं,
माल के हिस्से ज्यादा कर दिए, 7 के बजाय 84 हिस्से कर दिए। बात समझ में आ गई। अब जरा नीचे वाले मसले पे, इसको किससे जरब देनी है, 7 के साथ, ऊपर वाले मसला जिसे बनाया था, तो इस 12 को 7 से जरब दें, 12 सते 84, तो 12 के आगे थोड़े से फासले पर 84 लिख लें, यह मसला भी 84 से बन गया। और किससे जरब दी, 7 के साथ, तो नीचे हिस्सों को भी 7 से जरब दें, 7 सते 49, बेटे का हिस्सा 49 हो गया, और खुनसा का हिस्सा 5 है, 7 पंजे 35, इसका हिस्सा कितना हो गया,
35
हो गया। दोनों मसले 84 से बने हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक माल के 84 हिस्से करें तो खुनसा को 36 मिलते हैं, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक माल के 84 हिस्से करें तो खुनसा को 35 मिलते हैं, और बाकी सारे बेटे के हो गए। तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक बेटे के 48 हो गए, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक बेटे के 49 हो गए। फर्क समझ में आया, मालूम हुआ इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक खुनसा को कुछ ज्यादा मिल रहा है, 36 हिस्से मिल रहा है, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक खुनसा को 35 मिल रहे हैं 84 में से। फर्क समझ में आ गया अच्छी तरह जी। अब देखिए किताब पर, अब यही बयान करेंगे साहिब शरह विकाया भी। कहते हैं, वइन अरदत अन तारिफा अन्न सलासतम मिन सबअतिन अक्सरु अम खमसतम मिन इस्ने अशरा, अगर आपका यह इरादा है कि आप जान लें कि 7 में से 3 ज्यादा हैं या 12 में से 5, 7 में से 3 ज्यादा हैं या 12 में से 5, फला बुद्ध मिन तजनीस, तो तजनीस जरूरी है, यानी इनको एक ही जिंस का बना दो, एक ही जिंस का बना दो। हमने भी क्या किया था, एक जिंस के बना दिए या नहीं, एक भी 84 से, दूसरा भी 84 से। बात समझ में आ गई, यानी एक दूसरे जैसा बना दो मसले को।
کہتے ہیں وہ ہوا جعل الکسرین من مقام واحد، اور وہ یہ کہ دونوں کسریں آپ کر دیں ایک ہی جگہ سے، دونوں کیا کر دیں یعنی ایک ہی عدد سے سارا مسئلہ بناؤ، ایک بھی 84 سے بن گیا جیسے دوسرا بھی 84 سے بن گیا تو وہاں آپ کو فرق پتا چل جائے گا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مانا ہوا ہوا جعل الکسرین من مقام واحد، کہ دونوں کسریں جو ہیں ان کو آپ ایک ہی مقام سے کر لیں. فضرب السبعۃ فی اثنی عشر، تو آپ سات کو ضرب دے دیں 12 میں. سار اربعۃ و ثمانین، تو یہ 84 ہو گیا. ثم مضرب الثلاثۃ فی اثنی عشر، پھر آپ تین کو ضرب دے دیں 12 میں. خنسا کا حصہ کتنا تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک؟ 3 تھا. اس 3 کو بھی 12 سے ضرب دی، کیا بن گیا؟ 36. وہی بیان کر رہے ہیں کہ سم مضرب الثلاثۃ فی اثنی عشر، پھر آپ 3 کو ضرب دے دیں 12 میں. سار ستۃ و ثلاثین، تو یہ 36 ہو گیا. فذالک ہوا الثلاثۃ من السبعۃ، تو یہ ہے ثلاثۃ من السبعۃ، یہ ہے 7 میں سے 3. 7 میں سے
3
کتنا؟ 84 میں سے 36. 84 میں سے 36 یہ کیا ہے؟ 7 میں سے 3 ہے دراصل. وضرب الخمسۃ فی سبعۃ، اور پھر دوسرے مسئلے میں امام محمد رحمہ اللہ والے مسئلے میں بھی وضرب الخمسۃ فی سبعۃ، وہاں جو خنسا کا 5 ہے اس کو ضرب دے دیں 7 میں، تو سارا خمسۃ و ثلاثین، تو وہ 35 ہو گیا خنسا کا حصہ. فَهَذَا هُوَ الْخَمْسَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، تو یہ ہے 12 میں سے 5. یہ بھی کتنے میں سے بن گیا؟ 12 میں سے 5 دے دو یا 84 میں سے 35 دے دو، ایک ہی بات ہے نا، تو یہ بھی لہذا 12 میں سے 5 ہو گیا. وَالْأَوَّلُ، اور پہلا جو ہے وہ ہوا سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وہ 36 جو ہے زائدٌ عَلَى هَذَا، وہ اس پر زیادہ ہے. اے اعلی خمسط و ثلاثین، یعنی 35 پر وہ زیادہ ہے. بواحد، ایک بھائی، ایک زیادہ ہے. من اربعۃ و ثمانین، 84 میں سے جو 36 ہے وہ 35 پر ایک زیادہ ہے. کتنے میں سے؟ 84 میں سے. یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والاول، اور پہلا جو ہے وہ ہوا ستۃ و ثلاثون زائد علی ہذا، وہ 36 جو ہے وہ زائد ہے اس، یعنی اے علی خمسۃ و ثلاثین، اس 35 پر. بواحد، کتنا زیادہ ہے؟ ایک. من اربعۃ و ثمانین، کتنے میں سے؟ 84 میں سے. فہذا ہوا التفاوت بین ما ذهب الیہ ابو یوسف رحمہ اللہ و ما ذهب الیہ محمد رحمہ اللہ، تو یہ ہے وہ فرق جو درمیان میں ہے اس کے جس کی طرف امام ابو یوسف گئے ہیں اور جس کی طرف امام محمد گئے ہیں، یعنی یہ فرق ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول میں. دونوں کی تفسیروں کے مطابق یہ فرق نکلتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.